नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय संपर्क योजना संशोधित उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना को अगले 10 वर्ष की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है। इस पर 28,840 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में बताया कि क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान अनुपयोगी हवाई पट्टियों पर 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा।
उड़ान 2.0 इसमें 100 न्यू एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा। 100 न्यू एयरपोर्ट्स को चैलेंज मोड में डेवलप किया जाएगा। राज्य सरकारों को ये चैलेंज दिया जाएगा कि आप लोग प्रायोरिटी डिसाइड करो कहाँ पे एयरपोर्ट बनाना है, और लैंड से रिलेटेड, परमिशन से रिलेटेड, कहीं पर भी कोई भी इश्यू आता है वो सब आप प्रायोरिटी बेसिस पे क्लियर करो, उस एयरपोर्ट को लिया जाएगा इस प्रोजेक्ट।
मंत्रिमंडल ने आवर्जन वीजा, विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग योजना को 31 मार्च 2026 के बाद 5 वर्ष के लिए 1800 करोड़ रुपए के बजट परिवर के साथ जारी रखने को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य भारत में आवर्जन वीजा जारी करने और विदेशियों के पंजीकरण से संबंधित कार्यों को आपस में जोड़ना और सुव्यवस्थित करना है। सरकार ने कल शाम संसद भवन परिसर में पश्चिम एशिया की स्थिति पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन लल्लन सिंह, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और अन्य नेता शामिल हुए। श्री रिजिजू ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में सभी दलों के सदस्यों को धन्यवाद देते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं के सभी प्रश्नों और चिंताओं का सरकार ने समाधान किया है। सरकार ने कहा है कि देश में प्रतिवर्ष 26 करोड़ टन कच्चे तेल की शोधन क्षमता है। पश्चिम एशिया घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार पीएनजी विस्तार पर ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि सभी राज्यों में पीएनजी कनेक्शन संबंधी आवेदन शुल्क और स्वीकृत समय सीमा को व्यवस्थित करने के लिए गजट अधिसूचना जारी की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की कल अध्यक्षता की। बैठक में एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री वैष्णव ने कहा कि एआई और संबंधित उभरती प्रौद्योगिकियां आज दुनिया को बदल रही हैं, जिससे ये हमारे लिए अत्यंत प्रासंगिक विषय बन गया है। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में 6 गुना और निर्यात में 8 गुना वृद्धि हुई है। वर्तमान में हर इस क्षेत्र में देश में 25 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। सरकार ने अपनी संचार अवसंरचना को उन्नत करने और कवच स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली को विस्तारित करने के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। रेल मंत्रालय ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य उन्नत फाइबर संचार प्रणालियों और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से रेलवे नेटवर्क को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि मध्य रेलवे के सभी 5 मंडलों में 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से दोहरे फाइबर संचार नेटवर्क की स्थापना के लिए 2 प्रमुख परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। पश्चिम एशिया युद्ध विराम की कोशिशें असफल हो गई हैं। ईरान ने अमरीका द्वारा पेश किए गए 15 सूत्रीय प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार तेहरान को ये प्रस्ताव मध्यस्थों के जरिए प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव में अत्यधिक मांगें थी, इसलिए इसे खारिज कर दिया गया। अमेरिका के प्रस्ताव में ईरान से उसके परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने, मिसाइल क्षमता घटाने, होर्मुज जल डमरू को फिर से खोलने, क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों को समर्थन करने और चरणबद्ध प्रतिबंधों में ढील स्वीकार करने की मांग की गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामनवमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान राम की महान जीवन गाथा हमें सत्य, न्याय और सद्गुण के मार्ग पर चलकर सार्थक जीवन जीने का संदेश देती है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।